আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন والصلاه والسلام على من كان نبيا وادم بين الماء والتين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق الله العظيم بارگاہ رسالت میں درود پاک نذرانہ پیش کی اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد صلاه دائمه بدوام الملك الحي القيوم نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا پاس روزے بھی تھے سجدے بھی زکات و حج بھی پاس روزے بھی تھے سجدے بھی زکات و حج بھی کام نہ آیا محشر میں کچھ ان کی رحمت کے سوا کام نہ آیا محشر میں کچھ ان کی رحمت کے سوا اور شامیانہ نہیں خورشید قیامت کے لیے شامیانہ نہیں خورشید قیامت کے لیے کالی کملی کے سوا چادر عطرت کے سوا نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا من علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمد ارسله مبشرا ارسله ممجدا صلوا علیہ دائما صلوا علیہ سرمدا صلی اللہ علی النبی الامی والی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو قلب کی گہرائیوں سے نئے اسلامی سال کی آمد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور بارگاہ رب العزت میں دعا گو ہوں اور آپ تمام حضرات سے بھی کہتا ہوں کہ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی اس نئے اسلامی سال کو تمام عالم اسلام کے لیے اور خصوصاً پاکستان کے لیے امن اور سلامتی کا سال بنا الحمدللہ جامع مسجد امیر حمزہ میں محرم الحرام کے 9 روزہ سالانہ جلسوں کا یہ 4th سالانہ اجتماع ہے 2020 سے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا اور کوشش یہ کی کہ ہر سال مختلف عنوانات پر گفتگو کی جائے پہلے سال ہم نے اہل سنت کے 12 امام اس عنوان پر گفتگو کی دوسرے سال اشرہ مبشرہ ان کے فضائل مناقب ان پر گفتگو کی اور تیسرے سال یعنی گزشتہ سال امہات المومنین کے فضائل مناقب ان پر گفتگو کی اور جو ان پر اعتراضات ہوئے ان کے جوابات دیے ہماری کوشش یہ رہی کہ کرنٹ ایشو جو ہیں ان پر گفتگو کی جائے اور ان پر جو اعتراضات کم علم یا بے علم لوگ کر رہے ہیں ان کے قرآن و حدیث سے جوابات دیے جائیں تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں جو شکوک و شبہات ہیں وہ دور ہو جائیں الحمدللہ 3 سال بڑی کامیابی سے گزرے اور عوام اہل سنت نے عموماً اور خصوصاً متعلقین سلسلہ اشرفیہ نے کثیر تعداد میں ان محافل میں شرکت کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بڑی کامیابی عطا فرمائی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے اور بزرگان سلسلہ اشرفیہ کی نگاہ کرم ہے کہ یہ چوتھا سال شروع ہو رہا ہے اور ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس مرتبہ ہم نے عنوان رکھا ہے عقائد اہل سنت اور ذکر اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. یہ ایک وسیع موضوع ہے اور عقائد اہل سنت میں کئی موضوعات اس کے ذیل میں آ جاتے ہیں. عنوان یہی ہے عقائد اہل سنت اور ذکر اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آخری تین دن تو صرف اہل بیت کا ہی ذکر ہوتا ہے, 7, 8 اور 9. 9 کا آخری دن جو شب عاشورہ ہے, اس سے قبل جو ایام گزرتے ہیں ان میں ہم مختلف عنوانات رکھتے ہیں. تو عقائد اہل سنت کے تحت بہت سارے اہم عنوانات ہیں جن میں عقیدہ توحید و رسالت, عقیدہ ختم نبوت, ناموس رسالت, عظمت قرآن اور عظمت صحابہ و اہل بیت اور اسی طرح دیگر عنوانات ہیں. الحمدللہ آج کا عنوان ہے عقیدہ توحید. جس خلوص اور محبت کے ساتھ آپ لوگ آج آئے ہیں اسی طرح بقیہ دنوں میں بھی تشریف لائیں انشاءاللہ تعالی. اللہ رب العالمین کے کرم سے اور بزرگان سلسلہ اشرفیہ کی نگاہ کرم سے ہر روز ایک نیا عنوان آپ کو ملے گا, اور ہم نے کوشش کی ہے کہ قرآن و حدیث سے, آثار صحابہ سے دلائل دیے جائیں تاکہ انکار کی کوئی گنجائش نہ رہے اور ہمارے جو سنی صحیح العقیدہ ہیں, اہل سنت و جماعت ہیں, وہ اپنے عقائد پر مضبوطی کے ساتھ ثابت قدم رہیں. قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مشہور سورہ مبارکہ سورہ اخلاص آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. پہلے سورہ مبارکہ کا ترجمہ, پھر اس کا شان نزول, اور پھر عقیدہ توحید کے متعلق دلائل, براہین, گزارشات. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. ارشاد ربانی ہوا قل ہو واللہ احد. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد, اللہ بے نیاز, لم یلد, نہ اس نے کسی کو جنا, ولم یولد, اور نہ وہ جنا گیا, ولم یکن لہ کفواً احد, اور کوئی اس کے برابر ہمسری والا نہیں. یہ ان آیت بینات کا ترجمہ ہے. اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے خود نہیں فرمایا, اپنے محبوب سے کہلوایا. یہ بھی ہو سکتا تھا نا, اللہ فرماتا ہے کہ میں اللہ ایک ہوں, ممکن تھا نا اپنی توحید خود بیان کر دی, بھائی میں ایک ہوں, مجھے مانو, میرا کوئی ہمسر نہیں, نہ ذات میں, نہ صفات میں, نہ کسی چیز میں, میں ایک ہوں, واحد ہوں, یکتا ہوں, اکیلا ہوں. نہیں, قل, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دی. خود کیوں نہیں فرمایا, محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے کیوں کہلوایا؟ وجہ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ خود بھی فرما سکتا تھا کہ میں اللہ ایک ہوں, لیکن اے محبوب تم بیان کرو. کیوں؟ محبوب میری توحید تم بیان کرو, تمہاری رسالت میں بیان کروں. میری توحید تم بیان کرو, تمہاری رسالت میں بیان کروں, تاکہ کوئی میری توحید بیان کرے تو وہ تمہاری سنت ہو جائے, اور تمہارا ذکر مبارک کرے تو میری سنت ہو جائے. سرکار کی رسالت کا بیان کرنا سنت الہیہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جگہ جگہ اپنے محبوب کا ذکر فرمایا, ان کی رسالت کا, ان کی قیادت کا, ان کی سیادت کا, ان کی بلندی کا, ان کی رفعت کا, ان کی عظمت کا, ان کی شان کا, پورا قرآن بھرا پڑا. तो रसूल का जिक्र करना, उनकी रिसालत का बयान करना सुन्नत इलाहिया, और अल्लाह की तौहीद बयान करना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुल हुवल्लाहु अहद, ऐ महबूब तुम फरमा दो कि वो अल्लाह एक है। अच्छा फरमाया हुवल्लाहु अहद, अहद के माना एक, वाहिद के माना एक, तो वाहिद भी कहा जा सकता था। उलमा ने लिखा कि वाहिद का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, अहद का लफ्ज इस्तेमाल किया। क्यों? वजह यह थी कि अहद वो होता है जिसका दूसरा कोई ना हो, अहद वो है जिसका दूसरा कोई ना हो, इसीलिए वो अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि सुनने वाला पढ़ने वाला समझ ले वो खालिक कायनात वो वाहिद है जिसका दूसरा कोई है ही नहीं। वो अपनी सिफात में भी यकता है, वो अपनी जात में भी यकता है, ना कोई उसकी सिफात में उसका शरीक है ना कोई उसकी जात में उसका शरीक है। अब आइए, बाद ने ये लिखा कि ये सूरत मक्की है और बाद ने लिखा कि ये सूरत मदनी है। आप जानते हैं ना कि कुरान मजीद फरकान हमीद जब नाजिल हुआ तो बाद सूरतें मक्की और बाद सूरतें मदनी। क्यों? वजह क्या थी? भाई कुरान तो एक ही है, ये मक्की मदनी कैसे कुरान हो गया? कुरान का ताल्लुक साहिब कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतना गहरा है, इतना मजबूत है, ऐ रसूल आप मक्के में जब तशरीफ फरमा होंगे और जो जो आयतें नाजिल होंगी वो मक्की हो जाएंगी, और जब आप मदीने मुनव्वरा में रौनक अफरोज होंगे तो वो आयतें मदनी हो जाएंगी। जब मेरे रसूल मक्की थे तो आयतें मक्की हुई, जब मदनी हो गए अब आयतें मदनी हो गई। ये है मक्की मदनी। तो बाद ने लिखा कि ये मक्के में नाजिल हुई, बाद ने लिखा कि मदीने में नाजिल हुई। अब आइए इसका शान नुजूल, इसके मुताल्लिक तीन रिवायतें हैं। हजरत उबई बिन काब रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि मुशरिकीन का एक गिरोह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आया, आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। उन्होंने पूछा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस रब पर ईमान लाने की आप हमें दावत देते हैं हमें उसका नसब नामा बयान फरमाइए। नसब नामा, नसब नामा आप जानते हैं ना, जैसे बेटे का नाम है, फिर बाप का नाम है, फिर दादा का नाम है, फिर परदादा का नाम, ये सारा होता है ना सिलसिला, नसब नामा, शजरा नसब कह लें आप, नसब नामा कह लें, बहुत से लोग कहते हैं पुश्तनामा, यानी पीछे से जो सिलसिला चल रहा है वो पता चल जाता है कि सिलसिला कहां तक पहुंचा, ठीक है ना। तो इन्होंने कहा रब का नसब नामा बयान कीजिए, तो उलमा ने लिखा उस वक्त ये सूरह मुबारक नाजिल हुई। दूसरी रिवायत, शौबी ने हजरत जाबिर जलील कदर साहबी रदी अल्लाह ताला उनसे नकल किया कि एक आराबी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आया और उसने कहा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अपने रब का नसब नामा दिखाइए या बताइए। वो कहते उस वक्त ये सूरत नाजिल हुई। तीसरी रिवायत, अबी वाइल ने हजरत इब्ने मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत की है कि कुरैश ने एक दफा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाइश की कि अपने रब का नसब नामा तो हमें बताइए। फरमाते हैं उस वक्त ये सूरत नाजिल। ये तीन रिवायतें इसके शान नजूल के सिलसिले में हैं, जिनसे ये साबित होता है कि ये सूरत मक्का मौजमा में नाजिल हुई। अता हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अनुमा से नकल करते हैं कि नजरान के ईसाइयों का एक वक्त आया और उन्होंने आके हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल किया ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बताइए कि आपके रब की हकीकत क्या है, अपने रब की हकीकत हमारे सामने बयान कीजिए। वो जबरजुद का बना हुआ है, वो याकूत का बना हुआ है, वो सोने का बना हुआ है, या वो चांदी का बना हुआ। ये नजरान के ईसाइयों का वफ्द आया, उसने सवाल किया नबी पाक अलैहिस्सलाम से। सरकार ने क्या फरमाया? फरमाया मेरा रब इन चीजों में से किसी का नहीं, मेरा रब इन तमाम अशिया का खालिक है, वो तो इनको बनाने वाला है। अच्छा सवाल क्यों किया था? सवाल उन्होंने इसलिए किया था कि उनके जो खुदा थे ना, वो सब इन चीजों के बने हुए, सोने का, चांदी का, याकूत का और मरजान का, मुख्तलिफ चीजों के, मट्टी का, इस किस्म के खुद बनाते थे, अपने सामने रखते थे और उन्हीं के सामने झुक जाते थे। तो उन्होंने सोचा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम जिस खुदा की तरफ हमें बुला रहे हैं, जिस खुदा पर ईमान लाने का हमसे कह रहे हैं, वो भी शायद ऐसे ही होगा माशाल्लाह जैसे हमने बना रखे, वो यही करते थे ना। और आप ये देखें कि इंसान की अकल, यानी ये कॉमन सेंस की बात है, आप खुद बनाएं अपने हाथ से, ठीक है ना, और फिर उसको सामने रख के उसके सामने झुक जाए, मेरा खुदा है। ये कैसा खुदा है जिसको बंदे बना रहे हैं? अरे खुदा की शान तो ये है कि बंदों को तख्लीक करता है और बंदे खुदा को बनाए, माजल्ला ये कैसी बात है। मैं इंडिया गया तो वहां पर एक मंदिर है, बिरला मंदिर, तो वो गाइड हमें ले गया, उसने कहा कि जी हम आपको दिखाएंगे। हमने कहा ठीक है दिखाइए। एक बुत था, उसने कहा ये बारिश बरसाने वाला है, दूसरा था उसने कहा ये मुसीबतें टालने वाला है, तीसरा बुत था उसने कहा ये मुश्किलात दूर करने वाला है, चौथा था उसने कहा ये हवा चलाने वाला है। वो सारे बुत दिखा रहे मुझे, ये फला काम करता है, फला काम करता है। मैंने आखिर में कहा तुमने इतने सारे रखे हुए, कोई ये काम करता है, कोई वो काम करता है, हमारा तो एक ही है जो सारे काम कर देता है, एक ही है, वो वाहिद है, वो यकता है, वो अकेला है, ना कोई जात में उसका शरीक है, ना कोई सिफात में उसका शरीक है, उसी के हुक्म से सारे काम हो जाते हैं। तुमने अलग अलग बना दी, ये हवा चलाता है तो ये पानी बरसाता है, ये करता है। बहरहाल अजीब मजहब है। खैर उन्होंने सवाल इसीलिए किया था कि जैसे हमने बना रखे हैं ना, तो उनके जहन में यही तसव्वुर था कि नबी पाक अलैहिस्सलाम जिस खुदा की तरफ बुला रहे हैं, वो भी शायद सोने का, चांदी का, जबरजुद का, याकूत का, इनका बना हुआ है। तो वो वक्त आया, आके कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस खुदा की तरफ आप हमें दावत दे रहे हैं, हमें बताइए किस चीज का बना हुआ। सरकार ने एक जवाब दिया, इन चीजों में से किसी का बना हुआ नहीं, वो इन चीजों को तख्लीक करने वाला, वो तो इन चीजों को बनाने वाला है। और आका ने यही फरमाया था, उन खुदाओं को मत पूजो जिनको तुमने बनाया है, उस वादाउला शरीक के सामने झुको जिसने तुमको बनाया। अरे खुद बनाते हो और खुद सामने झुक जाते हो, ये कौन सी अकलमंदी है? उस खुदा वादाउला शरीक के सामने झुको जिसने तुमको बनाया है। तो फिर उलमा ने लिखा कि जब उन्होंने ये सवाल किया, उस वक्त ये आयत नाज़िल हुई, कुल ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनको बता दीजिए, हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह एक है, वो वाहिद है, वो यकता है, वो अकेला है, ना कोई जात में उसका शरीक है, ना कोई सिफात में उसका शरीक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद, ना उसने किसी को जना, वलम यूलद, ना वो जना गया, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और कोई उसके बराबर हमसरी वाला नहीं है। उस पर यह सूरह मुबारका नाजिल हुई। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरह मुबारका को नाजिल फरमाकर उनके तमाम एतराजात, सवालात, उन सब का जवाब दे दिया। अब आइए इसकी फजीलत भी हम बयान कर दें। ये बड़ी मुकद्दस बाबरकत सूरत है और बुखारी की हदीस है कि हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु इसको रिवायत फरमाते हैं। फरमाते हैं कि एक अंसारी सहाबी मस्जिद कुबा में इमामत किया करते थे। उनका ये दस्तूर था कि वो सूरत पढ़ने से पहले सूरह इखलास की तिलावत करते। यानी आप देखते ना, नमाज में जब इमाम पढ़ता है तो सूरह फातिहा पढ़ता है, उसके बाद कोई सूरत, ठीक है ना, और उसके बाद फिर रुकू हो जाता है, रकात हो जाती। तरीका ये है, सूरह फातिहा तो लाजिम है, उसके बाद कोई सूरत मिलाएं, या तीन आयतें हों उसके बाद आप रकात कर। उनका दस्तूर क्या था कि सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास पढ़ते थे, फिर कोई सूरत मिलाते थे, फिर रकात करते। यानी हर रकात में सूरह फातिहा लाजिम। तो लोगों ने इतराज किया, आप ही क्या करते हैं, अगर आपको पढ़ना है तो सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास पढ़ लें, फिर अगली रकात में दूसरी सूरत पढ़ लें। हुक्म यही है ना, एक सूरत को बार बार भी ना पढ़ो, और हर रकात में वही सूरत, फिर उसके बाद सूरत। उन्होंने कहा ये क्या तरीका। उन्होंने कहा जी मैं तो यही करूंगा, आपको नमाज पढ़नी हो तो पढ़े वरना जाए। और मसला ये था कि थे बड़े मुत्तकी परहेजगार, लोगों को पता था कि ये तकवा परहेजगारी में बेमिसाल, इसीलिए उनको इमाम बनाया था। अब चाहते भी नहीं थे कि इनको इमामत से हटाएं, और वो बात मानते भी नहीं थे। उन्होंने कहा चलो नबी पाक अलैहिस्सलाम से इनकी शिकायत कर। सरकार की बारगाह में गए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिदा का उम्मी व अबी, हुजूर हमारे माँ बाप कुर्बान, ये फला साहबी जो है ये कुबा में नमाज पढ़ाते, लेकिन करते ये हैं कि सूरह फातिहा के बाद लाजमी सूरह इखलास ये पढ़ते, फिर कोई सूरत पढ़ते, फिर रकात, हर रकात में ये कर रहे। सरकार ने फरमाया बुलाओ। उनको बुलाया, क्या तुम ऐसा करते हो? हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ऐसा करता हूं। फरमाया क्यों? ऐ अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम, मुझे इस सूरत से बड़ी मोहब्बत, इसमें अल्लाह की अहदियत का जिक्र है, समदियत का जिक्र है, लम यलिद होने का जिक्र है, वलम यूलद होने का जिक्र है, उसकी अजमत शान, उसकी रिफत, उसकी बुलंदी, ये सारा जिक्र इसमें है, मुझे इस सूरत से मोहब्बत है, इसीलिए मैं ये करता हूँ। आका ने फरमाया अगर वाकई तुझे इस सूरत से मोहब्बत है तो इस सूरत ने तुझे जन्नत में दाखिल कर दिया। गौर कीजिए, इस सूरत ने तुझे जन्नत में दाखिल कर दिया। इससे ये पता चला कि हमें चाहिए कि कुरान करीम की कोई ना कोई सूरत अपने मामूलात में रखे। जरूरी नहीं सूरह इखलास हो, सूरह इखलास भी है, सूरह नाज भी है, सूरह कौसर भी है, सबसे छोटी सूरत, कोई भी सूरत। बहुत से लोग हैं उनका तरीका है कि सुबह सूरह यासीन पढ़ते हैं, बहुत से लोग रात में सूरह मुल्क पढ़ते हैं। सरकार ने फरमाया सूरह मुल्क जो है ये अपने पढ़ने वाले के लिए रब से झगड़ा करेगी और उसको जन्नत में दाखिल कराएगी। मौला इसको माफ कर दे, ये मुझे पढ़ता था, इसे जन्नत में दाखिल कर दे, रब अपने करम से दाखिल फरमा दे। तो मुख्तलिफ सूरतों के खवास है ना, तो हमें ये चाहिए जो भी सूरत आप आसानी से पढ़ सकें, सूरह मुल्क हो, सूरह यासीन हो, सूरह मुजम्मिल हो, बहुत सारी सूरतें कुरान, कोई भी सूरत अपना मामूल जरूर बना दे, एक खास तादाद में उसे पढ़ें। और इसके लिए एक बात मैं और बता दूं, जो तजर्बे की बात है और मुशाहदे में भी है, कि अगर किसी को कोई परेशानी हो जो ला यन हल हो, यानी इसका कोई हल नहीं, 1000 मरतबा सूरह इखलास 3 दिन तक पढ़ ले, इंशाअल्लाह ताला मसला हल हो जाए। 1000 मरतबा सुभान अल्लाह, तो बस जोर से कह दिया, पढ़ने बैठोगे तो पता चलेगा। 1 घंटा लगेगा 1000 पढ़ने में। अब किसी को बता दोगे जी हुजूर ये होता नहीं पूरा, भाई मुश्किल भी तो आपकी ऐसी है, आप बैठ के पढ़े, अल्लाह करम फरमाएगा। तो 3 दिन तक 1000 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 11 मरतबा ये पढ़े 3 दिन तक लगातार, कोई गैप ना हो बीच में, मर्द औरत कोई भी पढ़ सकता है। और दिल में ये तसव्वुर रखें, ये अकीदा रखें, ये ख्याल रखें, अल्लाह ताला इसकी बरकत से अपने हबीब के सदके में ये मसला हल कर। انشاءاللہ تعالی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بہرحال تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان صحابی کو اس سورت سے محبت تھی، سرکار نے فرمایا یہ سورت اس نے تجھے جنت میں داخل کر دیا ہے۔ یعنی اگر کوئی قرآن کریم کی کسی سورت سے محبت رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے اسے جنت عطا فرمائے گا۔ ٹھیک ہے، اب آئیے آگے چلیں۔ عقیدہ توحید، عقیدہ توحید کیا ہے؟ اسلامی عقائد میں عقیدہ توحید کی بڑی اہمیت ہے، یعنی یہ بیس ہے، بنیاد ہے۔ عقیدہ توحید و رسالت، یہ دونوں عقیدے جو ہے نا، یہ بنیاد ہے۔ بنیاد ہی اگر کمزور ہوگی تو عمارت کیسے تعمیر ہوگی؟ اور اسی عقیدہ توحید کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اہل سنت پر شرک کے فتوے لگتے ہیں کہ یہ مشرک ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ شرک کر رہے ہیں، یہ مزاروں پہ جا رہے ہیں تو شرک کر رہے ہیں، یہ فلاں سے مانگ رہے ہیں تو شرک کر رہے ہیں، انہوں نے تعویذ لے لیا تو شرک کر دیا، اسی عقیدے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھو کہ عقیدہ توحید ہے کیا۔ صدر الشریعہ حضرت مولانا امجد علی صاحب اعظمی رحمت اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب بہار شریعت میں فرماتے ہیں، توحید کی تعریف کرتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ ایک ہے، اس کا شریک کوئی نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ احکام میں، نہ اسماء میں، واجب الوجود ہے، یعنی اس کا وجود ضروری ہے اور عدم محال ہے۔ اب اس کو میں اور آسان کر دوں، یہ تو میں نے جو بیان کیا ان کے الفاظ ہیں، اب میں اس کو ذرا آسان کر دوں۔ آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی واحد ہے، وہ یکتا ہے، وہ اکیلا ہے، نہ کوئی صفات میں اس کا شریک ہے، نہ کوئی ذات میں اس کا شریک ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی شان یہ ہے کہ وہ شروع سے ہے، آخر تک رہے گا، وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کی ذات میں تنقیص یا تکمیل کا سوال ہی پیدا نہیں ہے، اور اس کے لیے کسی جگہ کی ضرورت نہیں۔ ارے یہ پوری کائنات جو بنائی نا، اس نے انسان کے لیے بنائی، اس کو ضرورت نہیں ہے۔ کیا اسے آسمان کی ضرورت تھی؟ جب آسمان نہیں تھا جب بھی وہ تھا۔ کیا اسے زمین کی ضرورت تھی؟ جب زمین نہیں تھی جب بھی وہ تھا۔ ہمیں ضرورت ہے نا چلنے کے لیے، زمین نہ ہو تو کس پہ چلیں؟ چاند سورج، اس کو ضرورت تھی؟ نہیں، جب چاند سورج نہیں تھے تب بھی وہ تھا۔ سانس لینے کے لیے ہوا کی ضرورت ہمیں، اسے ضرورت نہیں، جب ہوا نہیں تھی تب بھی وہ تھا۔ جب زمین نہیں تھی جب بھی وہ تھا، جب آسمان نہیں تھا جب بھی وہ تھا، جب چاند ستارے نہیں تھے جب بھی وہ تھا، جب پھولوں میں مہک، موتی میں چمک، آبشار کے نغمے، سمندر کی روانی، یہ سب کائنات نہیں تھی تب بھی وہ تھا، اور کائنات نہیں ہوگی تب بھی وہ ہوگا نا۔ تو اب یہ کائنات کس کے لیے؟ کائنات انسان کے لیے بنائی، ہمارے لیے۔ زمین کا فرج بنایا تاکہ ہم اس پہ چلیں، آسمان کا شامیانہ لگایا اس کی ٹھنڈک میں رہیں، سورج کو روشن کیا کہ ہم اس سے روشنی حاصل کریں، چاند سورج کو روشن کیا، اس کی ٹھنڈک، اس کی چمک ہم حاصل کریں، رزق، کھیتیاں پیدا کی، غذا پیدا کی تاکہ ہم اسے کھائیں، جانور پیدا کی، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے، اور ہمیں اپنے لیے۔ پوری کائنات انسان کے لیے اور انسان کو اپنے لیے۔ اسی لیے شاعر نے بڑے پیارے انداز میں لکھا، وہ لکھتے ہیں، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے، جان لو ایمان کی ہے جان حب مصطفیٰ، के बजुद हुब्बे नबी बेकार है जिक्रे खुदा। सजदा करना हो तो यूं कर, सर हो सजदे में झुका, सर खुदा के वास्ते दिल मुस्तफा के वास्ते, सर खुदा के वास्ते दिल मुस्तफा के वास्ते। तो पूरी कायनात किसके लिए बनाई? इंसान के लिए, हमारे लिए बनाई ना, और हमें अपने लिए। आज यही तो मसला है, जो साइंसदान बनता है, साइंटिस्ट बनता है, गौर करता है कायनात में, ये जमीन क्यों है, ये आसमान क्यों है, ये सितारे क्यों है, ये फूलों में महक क्यों है, ये मोती में चमक क्यों है, ये आबशार के नगमे क्यों है, ये दरिया की रवानी क्यों है, हजारों सवालात, ये क्यों है, वो क्यों है, वो क्यों है, कभी इसने ये सोचा कि ये खुद क्यों है? कभी ये सोचा नहीं, जमीन क्यों है, आसमान क्यों है, सितारे क्यों है? लेकिन मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, याद रखिए, कायनात का क्यों समझने वाले आइंस्टाइन बने, कायनात का क्यों समझने वाले साइंसदान बने, कायनात का क्यों समझने वाले बू अली सीना बने, और अपना क्यों समझने वाले गौसे आजम बने, अपना क्यों समझने वाले सुल्तानुल हिंद बने, अपना क्यों समझने वाले कुतुबुल अख्ताब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बने, अपना क्यों समझने वाले दाता गंज बख्त अली हिजवेरी बने। कायनात क्यों है ये नहीं समझते, तुम क्यों हो ये नहीं समझे, ये समझ ले तो सारा मसला ही हल हो जाए। खैर, बात आगे निकल जाएगी, मैं फिर वापस पढ़ता हूं। तो ये पूरी कायनात बनाई अल्लाह ने इंसान के लिए। अब उसने क्या किया, कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह की मौजूदगी की गवाही दे रहा। कायनात का जर्रा जर्रा, जिस चीज को आप देखें, इंसान उन अलामात को देखकर, उन निशानियों को देखकर साहिबे निशान तक पहुंचा। कायनात को देखकर कायनात के बनाने वाले तक पहुंचा, असबाब को देखकर मुसब्बिबुल असबाब तक पहुंचा। कैसे? अब देखिए, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में फरमाता है, वकजालिक नुरिया इब्राहिम मलकूत السماوات والارض وليكونا من الموقنين। इसी तरह हम इब्राहिम को आसमानों और जमीनों की अजीम सल्तनत दिखाते हैं, या हमने दिखाई, और इसलिए कि वो ऐनुल यकीन वालों में से हो जाएं, यानी आंख से देखने वालों में से हो जाएं। अल्लामा मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस आयत के तहत जो माना बयान फरमाए और जो कुछ बयान फरमाया, उसका सिर्फ खुलासा मैं पेश कर रहा हूं। उसका खुलासा यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके इरशाद फरमाया, महबूब, जैसा कि आपको जमीन और आसमान के अजायबात दिखाए, इसी तरह हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जमीन और आसमान के उलूम और अजायबात, ये सब हमने उनको दिखाए और उनको सिखाए। ये अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वो निशानियां दिखाई। तो निशानी देखकर इंसान साहिब निशान तक पहुंचा, अलामत देखकर साहिब अलामत तक पहुंचा, असबाब देखकर मुसब्बिबुल असबाब तक पहुंचा। अच्छा, अब बाद लोग वो हैं जो माज़ल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह अल्लाह तबारक व ताला के वजूद के ही मुनकिर हैं, जिन्हें कहा जाता है दहरिया, वो मानते ही नहीं। वो कहते नहीं कि ये पूरी कायनात जो है ये एक इनकलाब आया, एक रेवोल्यूशन है, एक इनकलाब है, खुद ब खुद ये कायनात बन गई, कोई बनाने वाला नहीं। हालांकि ऐसा नहीं है, हर चीज अपने वजूद में किसी ना किसी इल्लत और सबब की मोहताज है। याद रखिए, हर चीज, कायनात की कोई भी चीज आप ले लेना। अच्छा, मिसाल के तौर पर आप खुद अपना जिस्म ले लें, इंसान का जो जिस्म है इसमें एक गोश्त का लोथड़ा है, दिल। आप मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, किसी डॉक्टर से बात करें, किसी मेडिकल स्टूडेंट से बात करें, तो वो आपको बताएगा कि इंसानी जिंदगी का दारोमदार दिल पर है। दिल का काम क्या है? खून को पंप करता है, बंद होता है खुलता है, बंद होता है खुलता है, और इस अमल से पूरी बॉडी में सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होता, दौराने खून पूरी बॉडी में। उससे क्या होता है, जब वो खून गर्दिश करता है तो हाथ काम करता है, पैर काम करते हैं, इंसान चलता है, दिमाग काम करता है, इंसान सोचता है, आंख देखती है, कान सुनता है, जबान बोलती है, नाक सूंघती है, हाथ पकड़ता है, पैर चलता है। यह है ना हकीकत। जिसको फालिज हो जाए तो उसमें क्या होता है कि दौराने खून रुक जाता है। जिस हिस्से का, जिस आजा का, जिस उज्व का दौराने खून रुक जाए उसी को कहते हैं फालिज हो। मसलन हाथ पे हो गए ना, अब हाथ काम नहीं कर रहा, दौराने खून नहीं, वो कहते हैं इसकी मालिश करो, ये करो, फिजियोथेरापी कराओ। पैर पे हो गया, किसी भी चीज पे पता ये चला, हाथ को चलाने वाला कौन है? दिल। पैर को चलाने वाला दिल, जबान को चलाने वाला दिल, दिमाग को चलाने वाला दिल, आंखों को चलाने वाला दिल, कानों को चलाने वाला दिल, और दिल को चलाने वाला उसको भी तो कोई चलाने वाला होगा ना भाई। जो पूरे जिस्म को चला रहा है, अगर वो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड ना करे, दौराने खून ना हो, तो हाथ रुक जाए, काम करते करते रुक जाए ना, आंख देखते देखते रुक जाए, कान सुनते सुनते रुक जाए। भाई हार्ट अटैक होता है तो क्या होता है, इंसान को हार्ट अटैक होना एकदम बुलेट, हाथ पैरों ने काम छोड़ दिया, दिमाग ने, आंखों ने, कानों ने, बस वो गिर गया, डेथ हो गई। क्या हुआ जी? हार्ट अटैक, दिल पर हमला। उर्दू में अगर कहें ना, दिल पर हमला, दिल पे हमला हो गया, हार्ट अटैक हो गया। हमला हुआ, क्या हुआ? दिल ने काम करना छोड़। तो जरा सा ये सोचो कि हाथों को चलाने वाला दिल है, पैरों को चलाने वाला दिल है, जबान को चलाने वाला दिल है, कानों को, आंखों को, पूरे आजा को चलाने वाला दिल है। तो जब ये दिल चलाने वाला है, सोचो इसको चलाने वाला कौन? इसको चलाने वाली अल्लाह की जात, वो है जो इसको चला रहा है, यही उसकी शान है। आप असबाब पर गौर करते चले जाइए, मुसब्बिबुल असबाब तक पहुंच जाएंगे, मुसब्बिबुल असबाब तक पहुंच जाएंगे। अच्छा, अब आप देखें, आम, आम खाते हैं ना? खाते नहीं खाते? अरे बोलो ना, खाते, शर्माने की क्या बात। खुश तो सारे हो गए आम का नाम सुनकर, कि जैसे अभी मंगा रहा हूं मैं, मंगा नहीं रहा, मैं से पूछ रहा हूं। आम जब हम खाते हैं ना, तो गुठली निकलती है, निकलती है ना, गुठली आपने दबा दी जमीन में, ठीक है, उससे एक छोटा सा पौधा निकला, आपने पानी दिया, वो और बड़ा हुआ, पानी दिया और बड़ा हुआ, फिर वो एक छोटा सा दरख्त बना, फिर उसमें पत्ते लगे, फिर और बड़ा हुआ, एक तनावर दरख्त बना। उस जमीन से कौन है जो उसे निकाल रहा है? एक छोटा सा पौधा जमीन फाड़ कर निकल रहा है, और हम जमीन फाड़े तो उसको खोदे, और वो इतना सा आप उसको हाथ से उठा के फेंक दे, लेकिन उसकी अल्लाह की कुदरत जमीन फाड़ के वो निकल आए, दिन ब दिन वो बड़ा होता चला जा रहा है, यहां तक कि तनावर दरख्त बन गया। और जब तनावर दरख्त बन गया तो फिर क्या हुआ? उसमें कैरियां लगी, जब वो कैरियां थी तो वो पक्के आम बने, जब आम बने तो आपने आम तोड़ा, जब आम खाया तो उसके बाद क्या निकला? गुठली। वही तो दफन की थी, वही फिर दोबारा किसने निकाली? होवल अव्वल होवल आखिर होवल जाहिर होवल बातिन, जो अव्वल है वही आखिर है, जो जाहिर है वही बातिन है। उसने बता दिया, मेरी शान ये है, जो तुम बोगे उसी तरह के मैं तुम्हें निकाल कर दे दूंगा, कुछ शान है ना। अच्छा, अब आप देखिए, तरबूज खाया ना? तरबूज, आप कहेंगे आज तो फ्रूटी फ्रूट का जिक्र हो रहा है, लेकिन फ्रूट अभी मिलेगा नहीं। तरबूज खाया ना? किसी दरख्त में तरबूज लगा नहीं, बेल, बेल है उसको, ऊपर नहीं लगता बेल। और आम, आम की बेल होती है? होती है। दरख्त ऊपर लगता है। एक आदमी आम के दरख्त के नीचे बैठा, मतलब एक बाग में गया, उसने देखा कि तरबूज भी लगे हुए हैं और आगे बढ़ा तो दीगर फल हैं और देखा तो आम लगे हुए। उसने कहा यार ये क्या बात है, ये तरबूज ऊपर क्यों नहीं लगाया, अल्लाह पर एतराज कर रहा है माजल्ला, ये तरबूज ऊपर क्यों नहीं लगा, ये आम छोटे छोटे लगा दिए, अरे इसके लिए भी कोई दरख्त होता। अल्लाह की शान देखो, जैसे ही सोचा ऊपर से कैरी टूट कर सीधी सर पे गिरी, जैसे ही सर पे गिरी दिमाग घूम गया हजरत का, कहा वाकई मौला तेरा करम, इसकी जगह अगर तरबूज होता तो मेरा क्या हशर होता। अल्लाह की शान है ना, अगर तरबूज गिरता तो क्या हशर होता। उसकी कुदरत देखो, हर चीज अपने हिसाब से, अपने तनासुब से, एतदाम से, खूबसूरती के साथ कायनात में पैदा कर दी। जर्रे जर्रे को देखो और रब की शान को देखो और उसकी अजमत, उसकी रिफत, उसकी बुलंदी, उसकी कुदरत का इकरार करो। तो ये जितने भी असबाब हैं, आप उन असबाब पर गौर करते चले जाइए, आखिर में कहां पहुंचेंगे, मुसब्बिबुल असबाब, कहां पहुंचेंगे, मुसब्बिबुल असबाब तक। अब आइए तबई खवास। बाद लोग ये कहते हैं कि ये जो अशिया हैं, चीजें, इनके कुछ खवास हैं और उन्हीं की वजह से ये चीजें काम करती हैं। मसलन उनका नजरिया ये है, माजल्ला सुम्मा माजल्ला, कि इसमें कुदरत का कोई दखल नहीं, खवास है। और मिसाल देते हैं, देखिए आप पत्थर को ऊपर फेंके वो नीचे की तरफ आए, उसकी खासियत ये है कि जब भी आप फेंके, जितनी कुव्वत से फेंके वो नीचे की तरफ आएगा। तो इसी तरह जितने भी अशिया हैं, जितनी चीजें हैं, इनके खसूसियात हैं, खवास हैं, और ये उसी की वजह से काम करते हैं। हजरत इमाम राजी अपने वक्त के जलील कदर इमाम गुजरे, आपने फरमाया सुनो एक दरख्त था, फरमाया इसकी तरफ देखो, इसका तना जो है वो भी लकड़ी का है ना, दरख्त लकड़ी का होता है, और इसकी जड़ें जो हैं वो भी लकड़ी की। अगर तुम ये कहते हो कि चीजों के कुछ खवास हैं वो उन्हीं की वजह से चलती हैं, तो इसका दरख्त का तना भी लकड़ी का, इसकी जड़ें भी लकड़ी की, लेकिन तना ऊपर की तरफ जाता है, जड़ें नीचे की तरफ जाती हैं। बात समझ रहे हैं, तना ऊपर की तरफ जाता है और जड़ें नीचे की तरफ जाती हैं। इमाम राजी ने फरमाया अगर इस लकड़ी का खासा ये था कि ऊपर की तरफ जाना, तो फिर ये जड़ नीचे की तरफ क्यों जा रही है, और अगर इसका खासा नीचे की तरफ जाना था तो तना ऊपर की तरफ क्यों जा रहा है। पता ये चला कि खवास का दखल नहीं है, कोई दस्ते कुदरत है कि जो लकड़ी को ऊपर की तरफ ले जा रहा है, जो नीचे की तरफ ले जा रहा है। उस दस्ते कुदरत ने जैसा चाहा तने को ऊपर की तरफ कर दिया और दूसरे हिस्से को नीचे की तरफ कर दिया, इसमें इसका दखल नहीं है, ये खालिक कायनात का दस्ते कुदरत है ना अल्लाह की शान। इमाम शाफई अपने वक्त के जलील कदर इमाम गुजरे, किसी ने कहा जी वजूद है बारी ताला पर दलील, फरमाया दलील ये सामने शैतूत का दरख्त है, उसने कहा जी है, कहा ये बताओ इस दरख्त को अगर बकरी खा ले तो दूध पैदा होता है, ठीक है ना, और उसी को रेशम का कीड़ा खा ले तो रेशम पैदा होता है, शहद की मक्खी इस दरख्त के पत्तों को चाट ले तो शहद पैदा होता, हिरन इसे खा ले तो मुश्क पैदा होता। चीज एक ही है लेकिन उससे मुख्तलिफ चीजें पैदा हो रही हैं। अगर एक चीज का खासा एक ही हो और उससे एक ही चीज पैदा हो, अगर इसका खासा ये था कि इससे दूध पैदा हो तो फिर रेशम क्यों पैदा हो रहा है, और अगर रेशम है तो फिर बकरी से दूध क्यों पैदा हो रहा है, अगर इससे मुश्क पैदा होना था तो फिर शहद क्यों पैदा हो रहा है। कहा दरख्त एक ही है शैतूत का दरख्त, बकरी ने खाया तो अल्लाह ने दूध निकाल दिया, रेशम के कीड़े ने खाया तो अल्लाह ने रेशम बना दिया, और हिरन ने खाया तो अल्लाह ने मुश्क बना दिया। ये सब खालिक कायनात का दस्ते कुदरत, वो जैसा चाहता है वैसा बना देता। अच्छा अब वो कहते हैं कि जी एक निजाम है जो चल रहा है और माज़ अल्लाह इसमें, यानी जो दहरिये है ना जो अल्लाह को नहीं मानते, जो वजूद है बारी ताला के मुनकर हैं। कहते नहीं जी ये निजाम है, मसलन ये कि तखलीक इंसानी, इंसान की पैदाइश मर्द और जन के इख्तलात से औलाद है, ठीक है ना, ये बात कंफर्म है। लेकिन याद रखिए अल्लाह ताला ने एक कानून बनाया है और एक उसकी कुदरत है, एक कानून है और दूसरी उसकी कुदरत। कानून ये है कि मर्द और औरत के इख्तलात से औलाद होगी, है कानून, लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बगैर माँ बाप के पैदा कर दिया, ये उसकी कुदरत, बगैर माँ बाप के पैदा कर दिया ना। कानून ये है कि बगैर बाप के औलाद नहीं, कुदरत ये है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा कर दिया। कानून ये है कि छुरी के नीचे जो चीज आए वो कट जाए, कुदरत ये है कि इस्माइल जबीहुल्ला आए तो महफूज रहे। कानून ये है कि आग में जो चीज जाए जलकर खाक हो जाए, कुदरत ये है कि उसका खलील जाए तो गुले गुलजार बने, है ना। कानून उसने बना दिया, लेकिन जब वो अपनी कुदरत दिखाने पर आता है तो कानून को तब्दील कर देता है, कानून को तब्दील कर देता है। तो एक उसका कानून है और एक उसकी कुदरत। अच्छा आप ये कहते हैं कि जी मर्द और औरत से औलाद होती है, बहुत से ऐसे जिनके औलाद नहीं है ना, क्यों नहीं, अल्लाह की शान, कहीं लड़कियां हैं लड़के नहीं, कहीं लड़के हैं लड़कियां नहीं, कहीं दोनों हैं और कहीं दोनों नहीं, अल्लाह की शान। यहां बोले मैं ये शाहू नासम, वो यहां बोले मैं ये शाहू जुकूरा, वो कहते हैं हम जिसे चाहे लड़कियां दें, हम जिसे चाहे लड़के दें, जिसे चाहे दोनों दे दें, जिसे चाहे कुछ भी ना, ये अल्लाह की शान है, उसने अपने दस्ते कुदरत में रखा है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये सब चीज ऐसे ही अजबाब से पैदा हो रही है। हाँ हम ये मानते हैं बिलाशुबा ये पूरी दुनिया आलम असबाब है, ये सब आलम असबाब है, हर चीज का कोई ना कोई सबब है, हम आलम असबाब में रह रहे हैं, हम सब एक दूसरे के मोहताज हैं, लेकिन एक जात है जो किसी के मोहताज नहीं। नबीयीन उसके मोहताज हैं, सिद्दीकीन उसके मोहताज हैं, शुहदा उसके मोहताज हैं, सालेहीन उसके मोहताज हैं, आइमा मुज्तहिदीन मोहताज हैं, बुजुर्गाने दीन मोहताज हैं, औलिया कामिलीन मोहताज हैं, सारी कायनात उसकी मोहताज है, वो किसी का मोहताज नहीं। उसकी शान यही है, वो शुरू से है और आखिर तक रहेगा, वो अजल से है और अबद तक रहेगा, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, ये है अल्लाह तबारक व तआला की शान। हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन फरमाते हैं सुबहान है वो जात, बड़े गौर से सुनिए हजरत अली का इरशाद, सुबहान है वो जात जिसने चर्बी की एक बोटी से दिखाया। पहले मैं उनका इरशाद बयान कर रहा हूं, बाद में इसकी तशरीह करूंगा। फरमाते सुबहान है वो जात जिसने चर्बी की एक बोटी से दिखाया, जिसने नरम हड्डी से सुनवाया, जिसने गोश्त के टुकड़े को गोया कर दिया। बात समझ में आई, आंख जो है ना आंख, इसमें जो दीदा है ये क्या है, चर्बी है, चर्बी है ना। फरमाया सुबहान है वो जात जिसने चर्बी की बोटी से दिखाया, जिसने नरम हड्डी से सुनवाया, ये कान है ना, इसमें हड्डी नरम हड्डी समाध है या नहीं, जिसने नरम हड्डी से सुनवाया और जिसने गोश के लोथड़े को गोया कर दिया। शान देखो, गोश ये भी है और गोश ये जबान भी है, ये कान जो है ये भी गोश्त है, ठीक है ना, हाथ और पैर ये भी गोश्त है या नहीं। मेरे ख्याल से आपके नहीं है शायद, है, चलो शुक्र है, मैंने कहा हो सकता है आपके हाथ पैर किसी और चीज के बने, पूरा जिस्म इंसानी गोश्त, हाथ भी गोश्त, कान भी गोश्त, आंखें भी, पूरा जिस्म हाथ पैर सब, लेकिन कुव्वत गोयाई सिर्फ जबान, सिर्फ जबान में। अच्छा कुरान में अल्लाह ने फरमाया सूरह यासीन में अल यौम नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लमुना अयदीहिम व अर्जुलिहिम, आज हम उनके मुंह पर मोहर लगा देंगे, उनके हाथ और पैर कलाम करेंगे, कब, कयामत में, قیامت میں. اب دیکھیں دنیا میں کوئی عدالت ہوتی ہے نا, لوگ مکر جاتے ہیں, گواہ مکر جاتے ہیں اور پیسے لے کر لوگ جھوٹی گواہی دے دیتے, ہوتا ہے نا جج کے پاس. قیامت میں کیا ہوگا, گواہ کون, کوئی انسان گواہی دے گا نہیں, کوئی فرشتہ گواہی دے گا نہیں, انسان کے اعضا یہ گواہی دیں. غور کرو کس کو پیسے دو گے, کس کو رشوت دو گے. دنیا میں تو رشوت دے کر جھوٹے گواہ بنا دیے اور چھٹ گئے, انہوں نے گواہی دے دی, ہاں جی ہاں میں گواہ ہوں. اللہ کے غضب سے نہیں ڈرتے, نہ کچھ دیکھا نہ کچھ, کہہ دیا میں گواہ ہوں, پیسے لے لیے نا, جج نے فیصلہ کر دیا جی یہ گواہ ہے. قیامت میں قرآن کہتا ہے وَتُكَلَّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلِهِمْ, ہاتھ اور پیر بولیں گے, یہ ہاتھ کلام کرے گا مولا میرے ذریعے اس نے یہ غلط کام کیا, یہ پیر کلام کرے گا میرے ذریعے یہ غلط راستے کی طرف چلا تھا. اب آپ کہیں گے یہ ہاتھ کی تو زبان نہیں ہے, یہ کہاں سے بولے گا, یہ پیر کی تو زبان نہیں, یہ کہاں سے بولے گا. میرے بزرگوں ذرا سا سوچو, آپ کہیں گے تو گوشت ہے, یہ سوچو یہ زبان بھی تو گوشت ہے, یہ زبان بھی تو گوشت ہے. تو جو خالق کائنات زبان کے اس ٹکڑے کو قوت گویائی دے سکتا ہے, کیا وہ ہاتھوں اور پیروں کو نہیں دے سکتا, دے سکتا ہے نا, جب اس نے اس چھوٹے سا ٹکڑا ہے نا اتنا سا. اور یہی فتنہ ہے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے زبان پکڑ کے کھینچ رہے, لوگوں نے کہا حضرت کیا کر رہے ہیں, فرمایا یہی تو فتنہ ہے, اس کو جس نے قابو کر لیا اس نے سب کو قابو کر لیا. زبان کو قابو میں رکھو, زبان کو قابو میں رکھو, یہی زبان عزت کروائے اور یہی زبان ذلیل کر. اور مزے کی بات کیا ہے, کام زبان کا ہوتا ہے جسم کو پٹنا پڑتا ہے, ہوتا ہے یا نہیں, کسی کو گالی دے کے دیکھ لینا پتہ چل جائے گا کیسی ٹھکائی ہوگی. زبان کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا, پکڑ کے مار رہے ہیں پیٹ رہے ہیں, اور کسی کی تعریف کی, کسی سے حسن اخلاق سے پیش آئے, اچھی طرح بولے, سرکار کی ثنا خوانی کی, ذکر الہی ذکر رسول یہ سب کچھ کیا, تو تعریف جسم کی ہو رہی, چوما جسم کو جا رہا, عزت جسم کو مل رہی ہے, کام زبان کا ہے, کام زبان کا ہے. اور یہاں پر ایک اور بات کہہ دوں پھر ہم آگے چلیں, دل اور زبان کا رشتہ بڑا مضبوط ہے. اگر دل کو صحیح کرنا ہے تو زبان کو صحیح کر لو, دل خود بخود صحیح ہو جائے گا, یہ فیکٹ ہے حقیقت, دل خود بخود صحیح ہو جائے گا. کیوں, جھوٹ زبان بولتی ہے سیاہ دل ہوتا ہے, غیبت زبان کرتی ہے سیاہ دل ہوتا ہے, چغلی زبان کھاتی ہے سیاہ دل ہوتا ہے, گالی زبان دیتی ہے سیاہ دل ہوتا ہے, نعت نبی زبان پڑتی ہے روشن دل ہوتا ہے, درود زبان پڑتی ہے روشن دل ہوتا ہے, ذکر الہی زبان کرتی ہے روشن دل ہوتا ہے. تو زبان کو درست کر لو, دل خود بخود درست ہو جائے, زبان پاک اور صاف ہو جائے. ہم وقت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں مشغول رہے, مصروف رہے, دل خود بخود صاف اور پاک ہو جائے. چلے آگے چلے, تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے کیا فرمایا, سبحان ہے وہ ذات جس نے چربی کی بوٹی سے دکھایا, نرم ہڈی سے سنوایا اور گوشت کے لوتھڑے کو گویا کر دیا. اب آپ دیکھیں انسان کا دل ہے نا, دل یہ سب کچھ کر رہا ہے, جیسا کہ میں نے بتایا کہ سرکولیشن آف بلڈ دل کی وجہ سے. اگر یہ دل کام کرنا چھوڑ دے, ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہیں جی اسٹینٹ ڈالیں گے. ایک صاحب کی عمر 75 سال, 75 سال عمر, 75, دل میں تکلیف ہو گئی, ڈاکٹر کے پاس گئے, انہوں نے کہا جی یہ تو ویو جو ہیں وہ بند ہیں, دو اسٹینٹ ڈالیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ڈال دیجئے. 3 گھنٹے کا آپریشن ہوا, 6 لاکھ بل ان کو دے دیا, 3 گھنٹے کا آپریشن, 6 لاکھ بل. تو جب بل ان کو دیا گیا تو انہوں نے دیکھا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تو ڈاکٹر نے سوچا کہ شاید یہ غریب آدمی ہے, ان سے کہا رہے آپ پریشان نہ ہو, میں کچھ کمی کر دوں گا, کہیں ان کے پاس ہوں گے نہیں پیسے, میں کچھ کمی کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں, میں بل دے کے نہیں رو رہا ہوں, मैं इससे ज्यादा दे सकता हूं। जो कुछ उन्होंने कहा वो सुनने और याद रखने के काबिल। डॉक्टर से कहा इसलिए नहीं रो रहा कि ये बिल ज्यादा है, मैं इसका डबल भी दे सकता हूं। मैं इसलिए रो रहा हूं कि तुमने 3 घंटे मेरे दिल की हिफाजत की, 6 लाख बिल बना दिया, जिसने 75 साल मेरे दिल को चलाया कोई बिल नहीं भेजा। गौर करो, 75 साल से वो मेरा दिल चला रहा है और कोई बिल उसने नहीं दिया। कितना करम है मेरे मौला का और मैं कितना नाशुकरा हूं। मैं इस पे रो रहा हूं, मैं अपने मौला की करम नवाजी पर रो रहा हूं कि कितना उसका करम और मैं कितना नाशुकरा। 75 साल तक ये दिल चलता रहा, उसकी तरफ से कोई बिल नहीं आया, तुमने 3 घंटे मेरे दिल की हिफाजत की, 6 लाख का बिल दे दिया। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों गौर करो, उसने हमारे जिस्म में कैसी कैसी नेमतें रखी, हमें उसकी परवाह नहीं, हम शुक्र नहीं करते। हर हाल में उसका शुक्र अदा करना चाहिए, उसकी नेमतों को उसी के मुताबिक इस्तेमाल करना ये शुक्राने नेमत है, और उसकी नेमतों को हुक्म के खिलाफ इस्तेमाल करना ये कुफराने नेमत है। कुरान कहता है वला इन शकरतुम ला अजीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे हम नेमतों में और इजाफा कर देंगे। वला इन कफरतुम, और अगर तुम कुफराने नेमत करोगे, इन्ना अज़ाबी लशदीद, तो समझ लेना हमारा अजाब बड़ा सख्त, फिर उस अजाब से बच नहीं सकते। चले आगे चलते हैं। निजामे कायनात, कुछ लोग कहते जी माज़ल्ला अल्लाह ताला का वजूद नहीं है, ये कायनात का निजाम ऐसे ही चल रहा है, खुद ब खुद चल रहा है, इसमें कोई वो नहीं। हजरत इमाम शाफई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक जगह से गुजर रहे थे, एक बूढ़ी औरत चरखा चला रही, चरखा काट रही। उसने कहा इमाम साहब अल्लाह मौजूद है या नहीं? फरमाया है। फरमाया तेरे पास कोई दलील है? हाँ मेरे पास दलील है। क्या? कहा ये चरखा। ये चरखा क्या दलील है? कहा दलील ये है, जब मैं इसे चलाती हूं तो चलता है और छोड़ देती हूं तो रुक जाता है। तो मैं ये गौर करती हूं कि पूरी कायनात का निजाम जो चल रहा है, सूरज अपने वक्त पे निकल रहा है, अपने वक्त पे डूब रहा है, चांद सितारे चमक रहे हैं, हवाएं चल रही हैं, बारिश हो रही है, ये गर्दिशे लैलो नहार, ये इस बात की दलील है कि इस सिस्टम ऑफ नेचर के पीछे कोई जात है जो पूरी कायनात को चला रही। जब मेरा मामूली चरखा बगैर चलाए नहीं चलता तो पूरी कायनात का निजाम कैसे चल रहा? पूरी कायनात का निजाम को चलाने वाला है ना जो चला रहा। आपने फरमाया अच्छा ये बताओ अल्लाह एक है या दो, खुदा एक है या दो? कहा एक। कैसे? कहा यही चरखा। बूढ़ी औरत कहते यही चरखा। इमाम शाफई ने फरमाया कैसे? उसने कहा देखिए मैं एक हूं ना, मैं ये चरखा चलाती हूं, चलाया चला, छोड़ दिया रुक गया। अगर इसको चलाने वाले दो हों, और जाहिर है दोनों आमने सामने बैठेंगे ना, अगर दोनों एक ही तरफ चलाएंगे तो बहुत तेज चलेगा, और मुखालिफ सिम चलाएंगे तो या तो रुक जाएगा या टूट जाएगा। भाई दोनों अपनी कुव्वत आजमाएंगे ना, एक उधर एक इधर, तो या तो बिल्कुल रुक जाएगा और या फिर टूट जाएगा। मैं ये सोच रही हूं जब ये मामूली चरखा अगर दो चलाएं तो एक तेजी से चलेगा या फिर रुक जाएगा, और पूरी कायनात का निजाम एक एतदाल के साथ चल रहा है। सुबह हुई, दोपहर हुई, फिर रात हुई, फिर सुबह हुई, फिर दोपहर हुई, फिर रात हुई, फिर बारिश का मौसम, फिर खिजा का मौसम, फिर बहार का मौसम, एक पूरी कायनात का सिस्टम चल रहा है। अगर चलाने वाले दो खुदा हो तो या तो ये निजाम तेजी के साथ चलेगा या फिर चलेगा ही नहीं, रुक जाएगा, चलेगा नहीं रुक जाएगा। जब ये इत्तेदाल के साथ चल रहा है, दलील है कि चलाने वाला एक ही है, चलाने वाला एक ही है जो चला रहा है, और बड़ी कामयाबी से और बड़े इत्तेदाल के साथ चला रहा है। कायनात की एक एक चीज पर आप गौर करते चले जाएं, आप हैरान हो जाएंगे। आप देखिए फिंगरप्रिंट लिए जाते ना, फिंगरप्रिंट क्यों लेते? एक के निशान जो उंगलियों के निशान है ना, दूसरे से नहीं मिलते, मिलने चाहिए भाई मिल जाए नहीं, अल्लाह ने कितने इंसान पैदा कर दिए, हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों बेशुमार बेशुमार इंसान हैं। एक ही उंगली यानी थम जो है, अगर अंगूठा ये आप लगा लें तो एक के निशान दूसरे से नहीं मिलेंगे। ये अल्लाह की शान है। एक एक चीज पर आप गौर करते चले जाएं, उसकी वहदानियत और उसकी शान, उसकी अजमत, उसकी रिफत, उसकी बुलंदी, ये सब जाहिर होती चली जाएगी। अब आइए, हमने इसमें एक चीज ये रखी थी कि अकीदाए तौहीद और आयात मुतशाबेहात। कुरान करीम में तीन किस्म के आयत हैं, मुहकमात, मुतशाबेहात और मुकत्तियात। मुहकमात वो आयतें कि जो तर्जुमे में जाहिर है वही अल्लाह की मुराद है, जो अल्लाह की मुराद है वही तर्जुमे में जाहिर है। मुकत्तियात, हुरूफ मुकत्तियात है ना, जिसका माना अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं, इनके अलावा कोई नहीं जानता। काफ हा या आइन स्वाद, हा मीम एन सीन काफ, नून काफ हा मीम, ये सारे क्या हैं, हुरूफ मुकत्तियात। कुरान का तर्जुमा करने वाले अलहम के अलिफ से लेकर वन्नास के सीन तक एक एक लफ्ज का, एक एक हर्फ का तर्जुमा करने वाले जब हुरूफ मुकत्तियात पर पहुंचते हैं तो लिखते हैं अल्लाह व रसूलहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल जानता, हम नहीं जानते, हम नहीं जानते। अब आप जरा सा सोचें, हजरत जिब्रील वही लेकर आए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह फरमाता है हा मीम ऐन सीन काफ, फरमाया मैं समझ गया। अल्लाह फरमाता है काफ हा या ऐन स्वाद, फरमाया मैं समझ गया। अल्लाह फरमाता है हा मीम, हुजूर ने फरमाया मैं समझ गया। अल्लाह फरमाता है काफ, हुजूर ने फरमाया मैं समझ गया। अल्लाह फरमाता है नून, फरमाया मैं समझ गया। अल्लाह जाने या रसूल जाने, लाने वाला जिब्रील भी नहीं जाने। कोट वर्ड होते हैं ना, फौज में भी होते हैं, हर जगह होते हैं। अल्लाह ने ऐसे हुरूफ अपने और नबी के दरमियान रखी है, ना तुम जानो, ना ये जाने, ना वो जाने, मैं जानू या मेरा महबूब जाने, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुरूफ मुकत्तियात। अच्छा, अब हैं आयतें मुतशाबेहात, वो आयतें जिनसे अकीदा नहीं बनेगा। याद रखिए, अकीदा बनेगा मुहकमात से, आयतें मुहकमात, जैसे قد جاءكم من الله نور و كتاب مبين, आयत मुहकम, या अय्युह नबी इन्ना अरसलनाक शाहिदन व मुबशिरन व नजीरा व दाइयन इलल्लाह बिइज्नही व सिराजन मुनीरा, आयत मुहकम, आयत मुहकम, इससे अकीदा बनेगा। और आयत मुतशाबे, अल्लाह फरमाता है यदुल्लाह फौक अयदीहिम, अल्लाह का दस्ते कुदरत उनके हाथों पर, यद के माना हाथ और अल्लाह यानी अल्लाह का हाथ, दस्ते कुदरत। तो जो तर्जुमे में जाहिर हो रहा है वो अल्लाह की मुराद नहीं है, और अल्लाह की जो मुराद है वो तर्जुमे में जाहिर नहीं है, इसीलिए उन्हें कहा गया आयाते मुतशाबेहात, कहा इससे अकीदा नहीं बनेगा। अच्छा, अकीदा आप कैसे बनाएंगे? अगर आपने तर्जुमा देकर अकीदा बनाना शुरू किया तो आप कहेंगे जी यद के माना तो है हाथ और अल्लाह, यदुल्ला यानी अल्लाह का हाथ, इसका मतलब है माजल्ला अल्लाह के हाथ हैं। जब हाथ मानो तो फिर बाजू भी मानना पड़ेगा कि हाथ बाजू में लगा होता है, और जब बाजू मानो तो फिर ये बॉडी भी माननी पड़ेगी कि जिसमें ये बाजू लगा होता है। पता चला कि खुदा को मानने चले पूरा बुत तैयार हो गया, यही ना। और अल्लाह ताला जिस्म जिस्मानिया से पाक है, मकीन मकानिया से पाक है, न उसका हाथ है, न पैर है, न सर है, न जिस्म है, न मकान है, वो तो ला मकामे, ला मकामे, और ला मका का मतलब कोई जगह नहीं, कहां है वो किसी जगह नहीं और हर जगह है, किसी जगह नहीं और हर जगह है, हाजिर है, मौजूद है। अगर आप सिर्फ कहें कि हाजिर, तो वो भी सही नहीं है। हाजिर के माना अल मौजूद फिल मकान, जो किसी मकान में मौजूद हो, और अल्लाह ताला के लिए मकान मानना यह भी गलत है। उसको मकान की जरूरत ही नहीं, उसको जगह की जरूरत नहीं। जब मकान नहीं था जब भी वो था, जब जगह नहीं थी जब भी वो था, जब जमीन नहीं थी जब भी वो था, जब आसमान नहीं था जब भी वो था, जब पूरी कायनात नहीं थी जब भी वो था, और कायनात नहीं होगी तब भी वो होगा। तो जिस्म जिस्मानियां से पाक है, उसके कान नहीं है मगर वो सुनता है, उसकी आंखें नहीं है मगर वो देखता है, उसके हाथ नहीं है मगर वो पकड़ता है, ये रब की शान है। तो यदुल्लाह फौका अईदीहिम, अल्लाह का दस्ते कुदरत उनके हाथों पर। तो अगर आप तर्जुमा देखकर अपना अकीदा बनाएंगे तो अकीदा नहीं बनेगा, अकीदा इससे बनाना ही जायज नहीं। याद रखिए, आयात मुतशाबिहात जितनी भी हैं उनसे अकीदा बनाना जायज नहीं। उलमा ने लिखा कि ये फला फला आयात जितनी भी हैं ये आयात मुतशाबिहात हैं, आयत मोहकम होगी उससे अकीदा बनाना जायज। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए जो ये लोग आयतें पेश करते हैं, और एक आयत खुसूसन पेश करते हैं, इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम, मैं तुम्हारी मिसल बशर हूं, मैं तुम्हारी मिसल बशर हूं, मैं तुम्हारी तरह बशर हूं। कहते हैं देखो हुजूर ने तो फरमाया कि हमारी मिसल बशर हूं, तो वो तो हमारी तरह। और दलीलें पेश करते हैं कि देखो हुजूर के दो हाथ हमारे भी दो हाथ, माजल्ला उनकी भी दो टांगे हमारी भी, उनकी दो आंखें हमारी भी, तो वो तो हमारे जैसे बशर हैं। हमने कहा अच्छा अगर यही दलील है तो अबू जहल के भी दो हाथ तुम्हारे भी दो हाथ, उसकी भी दो टांगे तुम्हारी भी दो टांगे, उसकी भी दो आंखें तुम्हारी भी, तो तुम अबू जहल जैसे हो जाओ। कहते नहीं 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 ये तो नहीं हो सकता, तो ये नहीं हो सकता तो फिर नबी जैसे कैसे हो। अरे नबी का मकाम तो बहुत बुलंद है। मैं सिर्फ एक बात ये कह दूं कि इस वक्त पूरी कायनात में देखो हजारों लाखों मौजिन है, कोई एक बिलाले हफी हो तो दिखा दो, एक बिलाले हफी हो दो। कोई एक बिलाले हफी हो तो दिखाओ। इस वक्त दुनिया में बड़े बड़े सुपे सलार हैं, कोई एक खालिद बिन वलीद हो तो दिखाओ। बड़े बड़े फाते हैं, कोई एक उमर इब्ने खत्ताब हो तो दिखाओ। बड़े बड़े खलीफा मौजूद हैं, कोई एक सिद्दीक अकबर हो तो दिखाओ। तुम रसूल के एक गुलाम की तरह नहीं हो सकते, रसूल की तरह कैसे हो सकते? उनका मकाम तो बहुत बुलंद, उनकी तरह कैसे हो सकते? रसूल के गुलाम की तरह नहीं हो सकते। वो बेमिसाल खुदा के बेमिसाल नबी, वो लाजवाब खुदा के लाजवाब नबी, वो बेनजीर खुदा के बेनजीर नबी, वो बनाने में बेमिसाल, ये बनने में बेमिसाल, वो सवारने में बेमिसाल, ये सवरने में बेमिसाल, वो निखारने में बेमिसाल, ये निखरने में बेमिसाल, वो खुदा होने में बेमिसाल, ये मुस्तफा होने में बेमिसाल। खुदाई में उसका जवाब नहीं, रिसालत में इनका जवाब नहीं। वो खुदा भी बेमिसाल है, वो रसूल भी बेमिसाल है, उनके सहाबा भी बेमिसाल हैं, उनके अहले बैत भी बेमिसाल है। यही हमारे सुन्नत व जमात का अकीदा है। तो आयात मुतशाबिहात से अकीदा बनाना जायज नहीं, हाँ आयत मोहकम से अकीदा बनेगा। और इनकी कैफियत क्या है कि जो आयत मोहकम है उसी पर लड़ाई कर रहे हैं, नहीं रसूल नूर नहीं है, वो कहते बशर हैं, वो कहते नूर है, और कुरान कहते कद जाकुम मिनल्लाह नूरुम व किताबुम मुबीन, तहकीक अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास आया एक नूर और एक रोशन किताब। और उलमा ने लिखा, मुफस्सरीन ने लिखा, मुहद्दिसीन ने लिखा कि नूर से मुराद जात पाक मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और किताब मुबीन से मुराद कुरान करीम। यही हमारा अकीदा अहले सुन्नत व जमात। तो आपने देखा कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरह मुबारका में अपनी शान बयान फरमाई, कुल ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए हुवल्लाहु अहद। तो अब हमारा अकीदा क्या है अहले सुन्नत का, खास तौर पर मैं इसकी भी वजाहत कर दूं। ये लोग जो कहते हैं ना जी ये मजार पे जाकर ये उनसे मांगते हैं, ये बुजुर्गों से जाके उनसे कहते हैं, तब के अल्लाह से कहना चाहिए, ये तो शिर्क है, ये बुजुर्गों को माजल्ला ये अल्लाह के मकाम पे पहुंचा देते हैं, खुदा बना देते हैं। दूर से सुनना ये खुदा की सिफत है, बेटा या बेटी देना खुदा की सिफत है, रिजक में बरकत देना खुदा की सिफत है, और ये सारी चीजें करना ये सब अल्लाह के दस्ते कुदरत में, तुम इन बुजुर्गों के पास क्यों जा रहे हो? मैंने कहा सुनो, हमारा अकीदा समझो पहले। اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ مالک حقیقی وہی ہے، رازق حقیقی وہی ہے، خالق حقیقی وہی ہے، مستعان حقیقی وہی ہے، شفا دینا اللہ کا کام ہے، شفا دینے والا اللہ ہے، ذریعہ نبی اللہ، ذریعہ ولی اللہ۔ اچھا خود ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں؟ نہیں نہیں، یہ شرک تھوڑی ہے، یہ تو شرک تھوڑی ہے۔ اب کسی نے کہا جی ایک آدمی داتا صاحب کے مزار پر گیا، اس نے کہا اے داتا میرے بیٹے کو بچا لے، اے داتا میرے بیٹے کو بچا لے۔ دیکھیں کتنا بڑا شرک ہے، اس کو کہنا چاہیے کہ اللہ تو بچا لے۔ اس نے داتا صاحب کو تو معاذ اللہ خدا بنا دیا، داتا گنج خالی اینٹ بیری، اور ان سے کہہ رہے بچا لے۔ میں نے کہا اچھا ایک بات سنو، ایک مثال ہے، کسی کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، خدا نخواستہ، موت اور زندگی کی کشمکش میں، آپریشن تھیٹر میں، والدین باہر بیٹھے ہیں، ڈاکٹر باہر نکلا، ان کے منہ سے نکلا ڈاکٹر میرے بیٹے کو بچا لیں، شرک ہو گیا؟ شرک ہوا یا نہیں ہوا؟ بھئی اللہ سے کہنا چاہیے تو بچا لے، ڈاکٹر سے کیوں؟ کہ نہیں جی وہ سامنے تو ڈاکٹر ہے نا۔ میں نے کہا جی سامنے جو داتا صاحب، اس میں کون سا شرک ہو گیا؟ جو کہہ رہا ہے اس کا عقیدہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہ ولی بچائے گا، عقیدہ یہی ہے کہ بچانے والا اللہ ہے، ذریعہ ولی اللہ، ذریعہ ولی اللہ ہے۔ کہتے جی پھر اللہ کا ڈائریکٹ نہیں سنتا، اس کو کیا ضرورت ہے کہ ولی کے وسیلے سے سنے، اس کو کیا ضرورت ہے کہ نبی کے وسیلے سے سنے، اس کو کیا ضرورت ہے کہ صالحین کے، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، ان کے وسیلے سے سنے۔ میں نے کہا یہ تو اس کی مرضی ہے، ڈائریکٹ سن لے یا وسیلے سے سن لے۔ بھائی قرآن نے کہا نا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، جاؤ کا محبوب آپ کے پاس آ جائیں، کیوں بھیجا؟ یہ کہتا نا مسجد میں آ جائیں، مجھ سے مانگیں، مجھ سے توبہ کریں، نہیں، جاؤ کا آپ کے پاس، پھر فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، پھر اللہ سے مغفرت طلب کریں، مغفرت ملے گی؟ نہیں۔ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دستے مبارک اٹھا دیں، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اللہ کو بہت زیادہ رحم کرنے والا پالے، اسی نے بھیجا ہے نا، تو اسی سے پوچھو کیوں بھیج رہا ہے، کیوں بھیج رہا ہے؟ وہ بھیج اسی لیے رہا ہے پتہ چل جائے میرے نبی کو چھوڑ کر مجھ تک نہیں پہنچ سکتے، پہلے ادھر جاؤ پھر ادھر آؤ۔ ارے جب نبی کے بغیر تمہارا کلمہ پورا نہیں ہو سکتا، نبی کے نام کے بغیر اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے، تو ان کو چھوڑ کر پھر کیسے خدا تک پہنچو گے؟ ہم پر شرک کے فتوے لگاتے ہیں، ارے جتنے متوحد ہم ہیں، بزرگان دین کو ماننے والے، آ کر دیکھو ذکر میں، یہ کہتے ہیں نا یہ اللہ کو چھوڑ کر ولی اللہ کی طرف جاتے ہیں، ہمارے ذکر میں بیٹھ جائیں تو پتہ چل جائے لا معبودا الا ہو، لا مقصودا الا ہو، لا موجودا الا ہو، لا محبوبا الا ہو، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی موجود نہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی محبوب نہیں، اس کے سوا کوئی نہیں ہے، وہی وہ ہے ہر جگہ، اس سے بڑی توحید اور کوئی ہوگی؟ ہم تو اسی کو مان رہے ہیں، اور اسی کے کہنے سے ولیوں کو بھی مان رہے ہیں، اسی کے کہنے سے نبیوں کو بھی مان رہے ہیں، یہ کیسے ہو گیا کہ نہیں جی یہ تو مشرک ہے؟ خیر بہرحال آج کی ہماری اس گفتگو کا حاصل یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی واحد ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے، نہ کوئی اس کی ذات میں اس کا شریک ہے، اور نہ کوئی اس کی صفات میں اس کا شریک ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، پوری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، پوری کائنات اس کی محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے در کے غلام ہیں، سب اسی سے مانگ رہے ہیں۔ اب اس کی شان ہے، کسی کو زیادہ چاہا تو محبوب بنا لیا، کسی کو چاہا تو ولی بنا دیا، کسی کو چاہا تو نبی بنا دیا، کسی کو چاہا تو کوئی منصب عطا کر دیا، یہ تو اس کی شان ہے، لیکن ہمارا کام کیا ہے؟ اس کے محبوبوں کو ماننا اور ان سے محبت کرنا۔ کوئی کسی کے محبوب کی برائی کرے تو اس کو غصہ آئے گا یا نہیں؟ آئے گا نا، یہ میرے محبوب کی برائی کر رہا ہے جس کو میں چاہتا ہوں، یہ کیوں؟ بلکہ مسئلہ بھی بڑا عجیب ہے، اگر آپ کسی کو چاہتے ہوں اور دوسرا بھی چاہنے لگے تو آپ ناراض ہو جائیں، दुनिया में होता है ना, रकाबतें शुरू हो जाती हैं, दुश्मनियां शुरू हो जाती हैं। ये मैं जिससे मोहब्बत करता हूं ये क्यों करता है, ये होता है ना। हम जिससे मोहब्बत करें नहीं चाहते कोई मोहब्बत करे। अल्लाह की शान देखो, वो जिससे मोहब्बत करता है वो चाहता है पूरी कायनात उससे मोहब्बत करे, पूरी कायनात उससे मोहब्बत करे। और जो माज़ल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह नफरत करेगा, बुग़्ज़ अदावत रखेगा, वो खुदा के गजब से नहीं बचेगा। तो आज की गुफ्तगू का हासिल यही है, इसी अकीदे पर कायम और दाइम रहिए। अल्लाह तबारक व ताला वाहिद है, यकता है, अकेला है, न उसकी जात में, न उसकी सिफात में, न उसके अफाल में, न उसके अहकाम में कोई उसका शरीक नहीं है। ये अल्हम्दुलिल्लाह यही हमारा अकीदा है। कल इंशाअल्लाह ताला अकीदे रिसालत पर गुफ्तगू होगी। आप हजरात इसी तरह शौक और जौक के साथ, मोहब्बत के साथ तशरीफ लाते रहें। हम एक दिन पहले अगले दिन का मौजू आपको बता देंगे। जो करंट इशू हैं उन्हीं पर इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू होगी। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।